अष्टम दृश्य। रावी के तट पर सैनिकों के साथ मालविका और चंद्रगुप्त। नदी में दूर पर कुछ नावें। मालविका, मुझे शीघ्र उत्तर दीजिए। चंद्रगुप्त, जैसा उसी समझो। तुम्हारी आवश्यक सामग्री तुम्हारे अधीन रहेगी। सिंहरण को कहाँ छोड़ा? मालविका, आते ही होंगे। चंद्रगुप्त सैनिकों से, तुम लोग कितनी दूर तक गए थे?
सैनिक,
अभी चार योजन तक यवनों का पता नहीं, परंतु कुछ भारतीय सैनिक रावी के उस पार दिखाई दिए। मालव की 50 हिस्त्रिकाएं वहां निरीक्षण कर रही हैं, उन पर धनुर्धर हैं। सिंहरण प्रवेश करके, वह पर्वतेश्वर की सेना होगी, किंतु मागध आश्चर्य है। चंद्रगुप्त, आश्चर्य कुछ नहीं। सिंहरण, क्षुद्रकों के केवल कुछ ही गुल्म आए हैं और तो? चंद्रगुप्त, चिंता नहीं, कल्याणी के मागध सैनिक और क्षुद्रक अपनी घात में हैं, यवनों को इधर आने जाने दो। सिंहरण, थोड़ी सी हिस्त्रिकाओं पर मुझे साहसी वीर चाहिए। सिंहरण, प्रस्तुत है, आज्ञा दीजिए। चंद्रगुप्त, यवनों की जल सेना पर आक्रमण करना होगा, विजय के विचार से नहीं, केवल उलझाने के लिए और उनकी सामग्री नष्ट करने के लिए। सिंहरण संकेत करता है और नावें जाती हैं। मालविका, तो मैं स्कंधावर के पृष्ठभाग में अपने साधन रखती हूँ, एक क्षुद्र भंडार मेरे उपवन में भी रहेगा। चंद्रगुप्त विचार करके, अच्छी बात है। एक नाव तेजी से आती है, उस पर से अलका उतर पड़ती है। सिंहरण आश्चर्य, तुम कैसे अलका?
अलका,
पर्वतेश्वर ने प्रतिज्ञा भंग की है, वह सैनिकों के साथ सिकंदर की सहायता के लिए आया है। मालवों की नावें घूम रही थीं, मैं जानबूझकर पर्वतेश्वर को छोड़कर वहां पहुंच गई, परंतु मैं बंदी होकर आई हूं। चंद्रगुप्त, देवी, युद्ध काल है, नियमों को देखना ही पड़ेगा। मालविका, ले जाओ इन्हें उपवन में। यवन, मालव के संधि विग्रह अमात्य से मिलना चाहता हूं। सिंहरण, तुम दूत हो?
यवन,
हाँ। सिंहरण, कहो, मैं यही हूं। यवन, देवपुत्र ने आज्ञा दी है कि मालव नेता मुझसे आकर भेंट करें और मेरी जल यात्रा की सुविधा का प्रबंध करें। सिंहरण, सिकंदर से मालवों की ऐसी कोई संधि नहीं हुई जिससे वे इस कार्य के लिए बाध्य हों। हाँ, भेंट करने के लिए मालव सदैव प्रस्तुत है, चाहे संधि परिषद में या रणभूमि में।
यवन,
तो यही जाकर कह दूं?
सिंहरण,
हाँ, जाओ, इन्हें सीमा तक पहुंचा दो।
रक्षकों?
यवन का रक्षकों के साथ प्रस्थान। चंद्रगुप्त, मालव, हम लोगों ने भयानक दायित्व उठाया है, इसका निर्वाह करना होगा।
सिंहरण,
जीवन मरण से खेलते हुए करेंगे वीरवर। चंद्रगुप्त, परंतु सुनो तो, यवन लोग आर्यों की रणनीति से नहीं लड़ते, वे हम ही लोगों के युद्ध हैं, जिनमें रणभूमि के पास ही कृषक स्वच्छंदता से हल चलता है। यवन आतंक फैलाना चाहते हैं और उसे अपने रणनीति का प्रधान अंग मानते हैं। निरीह साधारण प्रजा को लूटना, गांवों को जलाना उनके भीषण परंतु साधारण कार्य हैं। सिंहरण, युद्ध सीमा के पार के लोगों को भिन्न भिन्न दुर्गों में एकत्र होने की आज्ञा प्रचारित हो गई है, जो होगा देखा जाएगा। चंद्रगुप्त, पर एक बात सदैव ध्यान में रखनी होगी।
सिंहरण,
क्या? चंद्रगुप्त, यही कि हमें आक्रमणकारी यवनों को यहाँ से हटाना है और उन्हें जिस प्रकार हो भारतीय सीमा के बाहर करना है, इसलिए शत्रु की ही नीति से युद्ध करना होगा।
सिंहरण,
सेनापति की सब आज्ञाएं मानी जाएंगी, चलिए सबका प्रस्थान। नवम दृश्य। शिविर के समीप कल्याणी और चाणक्य।
कल्याणी,
आर्य, अब मुझे लौटने की आज्ञा दीजिए, क्योंकि सिकंदर ने बिपाशा को अपने आक्रमण की सीमा बना ली है, अग्रसर होने की संभावना नहीं और अमत्य राक्षस भी आ गए हैं, इनके साथ मेरा जाना ही उचित है।
चाणक्य,
और चंद्रगुप्त से क्या कह दिया जाए?
कल्याणी,
मैं नहीं जानती चाणक्य, परंतु राजकुमारी उसका असीम प्रेमपूर्ण हृदय भग्न हो जाएगा, वह बिना पतवार की नौका के दृश्य सदृश इधर उधर बहेगा।
कल्याणी,
आर्य, मैं इन बातों को नहीं सुनना चाहती, क्योंकि समय ने मुझे अव्यवस्थित बना दिया है। अमात्य राक्षस का प्रवेश।
राक्षस,
कौन?
चाणक्य।
चाणक्य, हाँ अमात्य, राजकुमारी मगध लौटना चाहती है।
राक्षस,
तो उन्हें कौन रोक सकता है?
चाणक्य,
क्यों,
तुम रोकोगे?
राक्षस, क्या तुमने सबको मूर्ख समझ लिया है?
चाणक्य,
जो होंगे वे अवश्य समझे जाएंगे। अमात्य, मगध की रक्षा अभिष्ट नहीं है क्या?
राक्षस,
मगध विपन्न कहाँ है?
चाणक्य,
तो मैं क्षुद्रकों से कह दूं कि तुम लोग बाधा न दो, और यवनों से यह भी कह दूं कि किया जाए कि वास्तव में यह स्कंधावर प्राच्य देश के सम्राट की का नहीं है, जिसे भयभीत होकर तुम विपाशा पार नहीं होना चाहते, यह तो क्षुद्रकों की शुद्र सेना है, जो तुम्हारे लिए मगध तक पहुंचने का सरल पथ छोड़ देने को प्रस्तुत है।
क्यों? राक्षस विचार कर, आह ब्राह्मण, मैं स्वयं रहूंगा, यह तो मान लेने योग्य सम्मति है। परंतु चाणक्य, फिर परंतु लगाया, तुम स्वयं रहो और राजकुमारी भी रहे, और तुम्हारे साथ जो नवीन जुल्म आए हैं उन्हें भी रखना पड़ेगा। जब सिकंदर रावी के अंतिम छोर पर पहुंचेगा तब तुम्हारी सेना का काम पड़ेगा। राक्षस, फिर भी मगध पर मेरा स्नेह है, मैं उसे उजड़ने और हत्याओं से बचाना चाहता हूँ। प्रस्थान। कल्याणी, क्या इच्छा है अमत्य? राक्षस, मैं इसका मुंह भी नहीं देखना चाहता, पर इसकी बातें मानने के लिए विवश हो रहा हूँ। राजकुमारी, यह मगध का विद्रोह अब तक बंदी कर लिया जाता यदि इसके स्वतंत्रता की आवश्यकता न होती। कल्याणी, जैसी सम्मति हो। चाणक्य, अमात्य, सिंह पिंजड़े में बंद हो गया है। राक्षस, कैसे? चाणक्य, जल यात्रा में इतना विघ्न उपस्थित हुआ कि सिकंदर को स्थल मार्ग से मालवों पर आक्रमण करना पड़ा। अपनी विजयों पर फूल कर उसने ऐसा किया, परंतु जहां फंसा उनके चंगुल में। अब इधर शूद्रकों और मागधों को नवीन सेनाओं से उसका बाधा पहुंचानी होगी। राक्षस, तब तुम क्या कहते हो, क्या चाहते हो? चाणक्य, यदि कि तुम अपनी संपूर्ण सेना लेकर विपाशा के तट की रक्षा करो और क्षुद्रकों को लेकर मैं पीछे से आक्रमण करने जाता हूँ, इसमें तो डरने की कोई बात नहीं। राक्षस, मैं स्वीकार करता हूँ। चाणक्य, यदि ना करोगे तो अपना अनिष्ट करोगे। प्रस्थान। कल्याणी, विचित्र ब्राह्मण है अमात्य, मुझे तो इसको देखकर डर लगता है। राक्षस, विकट है राजकुमारी, एक बार इससे मेरा द्वंद्व होना अनिवार्य है, परंतु अभी मैं उसे बचाना चाहता हूँ। कल्याणी, चलिए। कल्याणी का प्रस्थान। चाणक्य पुनः प्रवेश करके, राक्षस, एक बात तुम्हारे कल्याण की है, सुनोगे? मैं कहना भूल गया था। राक्षस, क्या? चाणक्य, नंद को अपनी प्रेमिका सुवासिनी से तुम्हारे अनुचित संबंध का विश्वास हो गया है, अभी तुम्हारा मगध लौटना ठीक ना होगा, समझे? चाणक्य का सभी प्रस्थान। राक्षस सिर पकड़कर बैठ जाता है। दशम दृश्य। मालवा दुर्ग का भीतरी भाग, एक शून्य पर कोटा। मालविका, अलका, इधर तो कोई भी सैनिक नहीं है, यदि शत्रु इधर से आवे तब? अलका, दुर्ग ध्वंस करने के लिए यंत्र लगाए जा चुके हैं, परंतु मालवा सेना भी सुख की नींद नहीं सो रही है। सिहरन को दुर्ग की भीतरी रक्षा का भार देखकर चंद्रगुप्त नदी तट से यवन सेना के पृष्ठभाग पर आक्रमण करेंगे। आज ही युद्ध का अंतिम निर्णय है, जिस स्थान पर यवन सेना को ले आना अभिष्ट था वहां तक पहुंच गई है। मालविका, अच्छा, चलो, कुछ नवीन आहत आ गए हैं, उनकी सेवा का प्रबंध करना है। अलका, देखकर, मालविका, मेरे पास धनुष है और कटार है, इस आपत्ति काल में एक आयुध अपने पास रखना चाहिए, तू कटार अपने पास रख ले। मालविका, मैं डरती हूँ, घृणा करती हूँ, रक्त की प्यासी छुरी अलग करो। अलका, मैंने सेवा का व्रत लिया है। अलका, प्राणों के भय से शस्त्र से घृणा करती हो क्या? मालविका, प्राण तो धरोहर है, जिसका होगा वही लेगा, मुझे भयों से नहीं, रक्षा करने की आवश्यकता नहीं, मैं जाती हूँ। अलका, अच्छी बात है, जा, परंतु सिहरण को शीघ्र ही भेज दे, यहाँ जब तक कोई न आ जाए मैं नहीं हट सकती। मालविका का प्रस्थान। अलका, संध्या का नीरव निर्जन मृत प्रदेश है, बैठूं? क्या चंद्रगुप्त ने आक्रमण कर दिया? परंतु यह स्थान बड़ा ही आरक्षित है। अरे, वह कौन है? कोई यवन सैनिक है क्या? तो सावधान हो जाओ। धनुष चढ़ाकर तीर मारती है, यवन सैनिक का पतन, दूसरा फिर ऊपर आता है, उसे भी मारती है, तीसरी बार स्वयं सिकंदर ऊपर जाता है, तीर का वार बचाकर दुर्ग में कूदता और अलका को पकड़ना चाहता है। सहसा सिहरण का प्रवेश। युद्ध। सिहरण तलवार चलाते हुए, तुमको स्वयं इतना साहस नहीं करना चाहिए सिकंदर, तुम्हारा प्राण बहुमूल्य है। सिकंदर, सिकंदर केवल सेनाओं को आज्ञा देना नहीं जानता, बचाओ अपने को। भाले का हार। सिहरण इस फुर्ति से बच्चे को ढाल पर लेता है कि वह सिकंदर के हाथ से छूट जाता है। यवनराज विवश होकर तलवार चलाता है, किंतु सिहरण के भयानक प्रत्याघात से घायल होकर गिरता है। सिहरण, यवन, दुस्साहस न करो, तुम्हारे सम्राट की अवस्था शोचनीय है, ले जाओ, इनकी शुश्रूषा करो। यवन, दुर्ग द्वार टूटता है अभी, हमारे वीर सैनिक इस दुर्ग को मटिया मेट करते हैं। सिहरण, पीछे चंद्रगुप्त की सेना है, मूर्ख, इस दुर्ग में आकर तुम सब बंदी होगे, ले जाओ सिकंदर को, उठा ले जाओ, अब तक और मालवों को यह न विदित हो जाए कि यही वह सिकंदर है। मालव सैनिक, सेनापति, रक्त का बदला, इस निशंस ने निरीह जनता का अकारण वध किया है, प्रतिशोध। सिहरण, ठहरो मालव वीरो, ठहरो, यह भी एक प्रतिशोध है, यह भारत के ऊपर एक ऋण था, पर्वतेश्वर के प्रति उदारता दिखाने का यह प्रत्युत्तर है। यवन जाओ, शीघ्र जाओ। तीसरे यवन सिकंदर को लेकर जाते हैं। घबराया हुआ एक सैनिक आता है। सिहरन, क्या है? सैनिक, दुर्ग द्वार टूट गया, यवन सेना भीतर आ रही है। सिहरन, कुछ चिंता नहीं, दृढ़ रहो। समस्त मालव सेना से कह दो, सिहरन तुम्हारे साथ मैं मरेगा। तुम मालविका को साथ लेकर अंतःपुर की स्त्रियों को भूगर्भ द्वार से सुरक्षित स्थान पर ले जाओ। अलका, मालव के ध्वंस पर ही आर्यों का यशो मंदिर ऊंचा खड़ा हो सकेगा। जाओ। अलका का प्रस्थान, यवन सैनिकों का प्रवेश, दूसरी ओर से चंद्रगुप्त का प्रवेश और युद्ध। एक यवन सैनिक दौड़ा हुआ आता है। यवन सेनापति, सेल्युकस क्षुद्रकों की सेना भी पीछे आ गई है। बाहर की सेना को उन लोगों ने उलझा रखा है। चंद्रगुप्त, यवन सेना मार्ग चाहते हो या युद्ध? मुझ पर कृतज्ञता का बोझ है, तुम्हारा जीवन। सेल्युकस कुछ सोचने लगता है। हम दोनों के लिए प्रसुद्ध है, किंतु। चंद्रगुप्त, शांति मार्ग दो। जाओ सेनापति, सिकंदर का जीवन बच जाए तो फिर आक्रमण करना। यवन सेना का प्रस्थान, चंद्रगुप्त का जय घोष।